अध्याय 59 इज़राइल का पहला राजा। यह अध्याय 1 शमूएल 8 से 12 पर आधारित है। इज़राइल की सरकार परमेश्वर के नाम में और उसके अधिकार से प्रशासित की जाती थी। मूसा 70 पुरनियों, प्रधानों और न्यायियों का काम परमेश्वर द्वारा दिए गए नियमों को लागू करना था। उनके पास राष्ट्र के लिए नियम बनाने का अधिकार नहीं था। राष्ट्र के रूप में इज़राइल के अस्तित्व की अवस्था यही थी और यही रही। एक काल से दूसरे काल में परमेश्वर द्वारा प्रेरित मनुष्यों को लोगों को निर्देश देने और नियमों के प्रवर्तन में निर्देशन करने के लिए भेजा गया। प्रभु को पूर्वाभास था कि इज़राइल एक राजा की इच्छा करेगा, परंतु उसने उन सिद्धांतों में बदलाव के लिए सहमति नहीं दी जिनके आधार पर राज्य की स्थापना हुई थी। राजा को परम प्रधान का प्रतिनिधि होना था। परमेश्वर को राष्ट्र के प्रमुख के रूप में मान्यता दी जानी थी और उसकी व्यवस्था भूमि की सर्वोच्च व्यवस्था के रूप में लागू की जानी थी। जब इज़राइली पहली बार कनान में बसे तो उन्होंने धर्मशास्त्र के सिद्धांतों को स्वीकार किया और देश यहोशू के शासन में समृद्ध हुआ। लेकिन जनसंख्या में वृद्धि और अन्य देशों के साथ मेल मिलाप से परिवर्तन आया। लोगों ने अपने मूर्ति पूजक पड़ोसियों के कई रीति रिवाजों को अपनाया और इस तरह काफी हद तक उन्होंने अपने विशिष्ट पवित्र चरित्र को त्याग दिया। धीरे धीरे परमेश्वर के प्रति उनकी श्रद्धा भी समाप्त हो गई और उन्होंने उसके चुने हुए लोग होने के सम्मान का मान रखना भी छोड़ दिया। मूर्ति पूजक सम्राटों के धूमधाम वाले प्रदर्शनों से आकर्षित होकर वे अपनी सादगी से थक गए। जनजातियों अर्थात विभिन्न गोत्रों में ईर्ष्या और द्वेष उत्पन्न हो गए। आंतरिक मतभेदों ने उन्हें कमजोर बना दिया। वे लगातार अपने मूर्ति पूजक शत्रुओं के आक्रमण के निशाने पर थे और लोग यह मानने लगे थे कि अन्य राष्ट्रों में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए सभी जनजातियों को एक सशक्त केंद्र सरकार के तहत एकजुट हो जाना चाहिए। परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करने से हटकर उनमें पवित्र परम प्रधान परमेश्वर के आधिपत्य से स्वतंत्र होने की इच्छा जागृत हुई और इस प्रकार संपूर्ण इज़राइल में राजशाही की मांग व्यापक हो गई। यहोशू के दिनों से शासन का संचालन इतनी ज्ञानपूर्णता और सफलता के साथ नहीं हुआ था जितना कि शमूएल के प्रशासन के समय हुआ। याजक, न्यायी और भविष्यद्वक्ता के तीन कार्यभारों के लिए परमेश्वर द्वारा नियुक्त उसने अपने लोगों के कल्याण के लिए अथक और निस्वार्थ उत्साह से परिश्रम किया था और उसके बुद्धिमत्तापूर्ण नियंत्रण में राज्य समृद्ध हुआ था। व्यवस्था पुनः स्थापित हुई, धार्मिकता को बढ़ावा दिया गया और उस समय के लिए असंतोष की भावना पर रोक लगाई गई। लेकिन बढ़ती आयु के साथ भविष्यद्वक्ता शासन के दायित्व को दूसरों के साथ बांटने को विवश हो गया और उसने अपने दो पुत्रों को अपने सहायकों के रूप में नियुक्त किया। शमूएल रामा में अपने कार्यभार के कर्तव्य संभाले रहा, नौजवानों को देश की दक्षिणी सीमा के पास लोगों के बीच न्यायिक प्रशासन के लिए बेशबा में रखा गया। शमूएल ने पूरे राष्ट्र की सहमति से अपने पुत्रों को यह कार्यभार सौंपा था, लेकिन वे अपने पिता के चयन में खरे नहीं उतरे। प्रभु ने मूसा के माध्यम से अपने लोगों को विशेष निर्देश दिए थे कि इज़राइल के शासकों को न्यायपूर्वक न्याय करना चाहिए, विधवा और पितृहीनों के साथ न्यायसंगत व्यवहार करना चाहिए और घूस नहीं लेनी चाहिए। लेकिन शमूएल के पुत्र लाभ देखकर पहले जैसे नहीं रहे, वे घूस लेने लगे और न्याय को विकृत करने लगे। भविष्यद्वक्ता के पुत्रों ने उन सिद्धांतों पर ध्यान नहीं दिया जिनसे वह उनके हृदय को प्रभावित करना चाहता था। उन्होंने अपने पिता की पवित्र निस्वार्थ जीवन शैली को नहीं अपनाया था। एली को दी गई चेतावनी ने शमूएल के दिमाग पर वह प्रभाव नहीं छोड़ा था जो उसे करना चाहिए था। वह अपने पुत्रों के साथ कुछ हद तक अत्यंत क्षमाशील रहा था और परिणाम उनके चरित्र और जीवन में स्पष्ट था। इन न्यायियों के अन्याय ने बहुत असंतोष उत्पन्न किया और इस प्रकार लंबे समय से उस गुप्त वांछनीय परिवर्तन के लिए आग्रह करने का बहाना उपलब्ध हुआ। इज़राइल के सभी पुरनिये इकट्ठे हुए और शमूएल से मिलने रामा गए और उन्होंने उससे कहा, तुम बूढ़े हो गए हो और तुम्हारे पुत्र ठीक से नहीं रहते और उनका चालचलन तुम्हारे चालचलन जैसा नहीं है। अब तुम अन्य राष्ट्रों की तरह हम पर शासन करने के लिए एक राजा दो। लोगों के बीच दुर्व्यवहार के मामलों को शमूएल के पास नहीं भेजा गया था। यदि उसके पुत्रों के कुमार्ग के बारे में उसे ज्ञात होता तो उसने अविलंब उन्हें अपदस्थ कर दिया होता, लेकिन याचिकाकर्ता ऐसा नहीं चाहते थे। शामुएल ने देखा कि उसका वास्तविक प्रेरक असंतोष और गर्व था, उनकी मांग एक सोचे समझे और सुनिश्चित प्रयोजन का परिणाम थी। शामुएल के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं की गई थी, सभी ने उसके प्रशासन की अखंडता और बौद्धिकता को स्वीकार किया, लेकिन वृद्ध भविष्यद्वक्ता ने अनुरोध को स्वयं की निंदा और स्वयं को हटाए जाने का प्रत्यक्ष प्रयास समझा। हालांकि उसने अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं किया, ना ही उसने उन्हें फटकार लगाई, लेकिन प्रार्थना में यहोवा के सम्मुख यह बात रखी और केवल उसी से सम्मति मांगी। प्रभु ने शामुएल से कहा, वही करो जो लोग तुमसे करने को कहते हैं। उन्होंने तुमको अस्वीकार नहीं किया है, उन्होंने मुझे अस्वीकार किया है। वे नहीं चाहते कि मैं उन पर राज करूं। उस दिन से जब मैं उन्हें मिस्र से निकाल कर लाया, आज तक उनके द्वारा किए गए सभी कार्यों के अनुसार उन्होंने मुझको छोड़कर अन्य देवी देवताओं की उपासना की है, और वे तुम्हारे साथ भी वही कर रहे हैं। लोगों के व्यवहार को अपने ऊपर व्यक्तिगत रूप से लेकर दुखी होने पर भविष्यद्वक्ता को झिड़का गया। उन्होंने उसके लिए निरादर प्रकट नहीं किया था, वरन उस परमेश्वर के अधिकार का अपमान किया था जिसने अपने लोगों के शासकों को नियुक्त किया था। जो परमेश्वर के विश्वसनीय सेवक से घृणा करते हैं और उसे अस्वीकार करते हैं, वे केवल मनुष्य के लिए ही नहीं, वरन उस गुरु की अवमानना करते हैं जिसने उसे भेजा था। वह परमेश्वर के कहे शब्द है उसकी दी हुई फटकार और सम्मति, जिन्हें अमान्य कर दिया जाता है। वह उसकी प्रभुता है जिसको अस्वीकार किया जाता है। इज़राइल के सबसे समृद्ध दिन वे थे जब यहोवा को उसके राजा के रूप में मान्यता प्राप्त थी, जब उसके द्वारा स्थापित प्रशासन और व्यवस्था को अन्य देशों के सरकार और नियमों की तुलना में श्रेष्ठ माना जाता था। प्रभु की आज्ञाओं के संदर्भ से मूसा ने घोषणा की थी, इन नियमों का सावधानी से पालन करो। यह अन्य राष्ट्र को सूचित करेगा कि तुम बुद्धि और समझ रखते हो। जब उन देशों के लोग इन नियमों के बारे में सुनेंगे, तो वे कहेंगे कि सचमुच इस महान राष्ट्र के लोग बुद्धिमान और समझदार हैं। व्यवस्था विवरण 4:6। लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था से दूर होकर वे वैसा बनने में असफल रहे जैसा परमेश्वर उन्हें बनाना चाहता था, और फिर उनके पापों के कारण उत्पन्न बुराइयों का आरोप उन्होंने परमेश्वर की सत्ता पर लगाया। इतने अंधे हो गए थे वे पाप के कारण। प्रभु ने अपने भविष्यद्वक्ताओं के माध्यम से भविष्यवाणी की थी कि इज़राइल एक राजा द्वारा प्रशासित होगा, लेकिन इसके आगे यह नहीं कहा गया कि इस प्रकार का शासन उनके लिए सर्वोत्तम था या परमेश्वर की इच्छानुसार था। उसने लोगों को स्वेच्छा से चलने की अनुमति दे दी, क्योंकि उन्होंने उसकी सम्मति के मार्गदर्शन में चलने से इनकार कर दिया था। होशे कहता है कि परमेश्वर ने क्रोध में आकर उन्हें एक राजा दिया, होशे 13:11। जब मनुष्य परमेश्वर से सलाह लिए बिना या उसकी प्रकट इच्छा के विरुद्ध अपनी मनमानी करने लगते हैं, तो परमेश्वर उनकी इच्छा को इसलिए पूर्ण करता है कि उन्हें मनमानी के दुष्परिणाम के कटु अनुभव के द्वारा अपनी मूर्खता का आभास हो और वे अपने पापों का प्रायश्चित करें। मानवीय घमंड और बुद्धिमत्ता अविश्वसनीय मार्गदर्शक है। परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध हृदय जिसकी अभिलाषा करता है, वह अंत में आशीष के बजाय श्राप के रूप में सामने आता है।
परमेश्वर चाहता था कि लोग केवल उसे एक नियमदाता और शक्ति स्रोत के रूप में देखें। परमेश्वर पर निर्भर होने के आभास से वे निरंतर उसकी ओर आकर्षित होंगे। उत्कृष्ट और शिष्ट बनकर वे उस नियति के लिए सुयोग्य हो जाएंगे जिसके लिए प्रभु ने उन्हें उसके चुने हुए लोगों के रूप में बुलाया है। लेकिन जब एक व्यक्ति को सिंहासन पर बैठाया जाता था, तो लोगों का ध्यान परमेश्वर पर से हट जाता था। वे मनुष्य की सामर्थ्य में अधिक विश्वास रखने लगते और परमेश्वर में उनकी आस्था घट जाती। राजा की गलतियां उन्हें पाप का मार्ग दिखाती और राष्ट्र को परमेश्वर से अलग कर देती। शामुएल को लोगों के निवेदन को स्वीकार करने का निर्देश दिया गया और प्रभु की असहमति की चेतावनी देने को और उन्हें उनके अपनाए मार्ग के परिणामों से अभिज्ञ करने को भी कहा गया। शामुएल ने लोगों से वे सारी बातें कहीं जो यहोवा ने कही थीं। उसने स्पष्ट रूप से उनके सम्मुख उन कठिन परिस्थितियों को रखा जिनका सामना उनको करना पड़ेगा, और उनकी उस समय की स्वतंत्र और समृद्ध अवस्था और आने वाली अत्याचार की अवस्था का तुलनात्मक वर्णन किया। उसने बताया कि उनका राजा अन्य राजशाहों के आडंबर और विलासिता का अनुसरण करेगा, और ऐसा करने के लिए जान और माल दोनों का कष्टपूर्ण बलात्ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा। उसकी सेवा टहल के लिए उनके सबसे बलवंत नौजवानों की मांग करेगा। उन्हें उसके आगे आगे चलने वाले सारथी, घुड़सवार और धावक बनाया जाएगा। उन्हें उसकी सेवा में भर्ती होना होगा और उन्हें उसके खेतों में हल चलाना पड़ेगा, उसकी फसलों की कटाई करनी होगी और उसकी सेवा टहल के लिए युद्ध के अस्त्र शस्त्र बनाने होंगे। इज़राइल की पुत्रियां शाही घराने में हलवाई और नानबाई होगी। अपनी राजसी अवस्था को संभालने के लिए वो उन भूखंडों को उनसे छीन लेगा जो यहोवा ने अपने लोगों को दी थी। उनके दासों में से सबसे योग्य और उनके मवेशियों को भी वो ले जाकर अपने काम पर लगा देगा। इस सब के अलावा राजा उनकी पूरी आय, उनके श्रम के काम या उनके खेतों की उपज का दसवां हिस्सा मांगेगा। आखिर में उसने कहा, तुम सब उसके नौकर बन जाओगे, और उस दिन तुम अपने राजा की वजह से रोओगे जिसे तुमने चुना होगा, और प्रभु उस दिन तुम्हारी नहीं सुनेगा। राजशाही का बलात्ग्रहण कितना ही कष्टदायक क्यों न हो, राजशाही के संस्थान के पश्चात उसे जब मन चाहे विस्थापित नहीं किया जा सकता था। लेकिन लोगों ने उत्तर दिया, नहीं, लेकिन हम पर एक राजा निश्चय होगा कि हम भी अन्य राज्यों की तरह हो। हमारा राजा हमारा न्याय करे, हमारे आगे आगे जाए और हमारे लिए युद्ध करे, अन्य राज्यों की तरह। इज़राइली ये नहीं समझ पाए कि इस संदर्भ में अन्य राज्यों की तरह नहीं होना एक विशेषाधिकार और आशीष था। परमेश्वर ने इज़राइलियों को अन्य सभी जातियों से अलग किया था जिससे वो उन्हें अपनी विशेष निधि बना सकें। लेकिन श्रेष्ठ सम्मान को तिरस्कृत करके मूर्ति पूजकों के उदाहरण को हृदय में सांसारिक रीति रिवाजों और परंपराओं को अपनाने की तीव्र इच्छा विद्यमान है। परमेश्वर से दूर जाकर वे संसार से प्राप्त होने वाले लाभ के लिए महत्वाकांक्षी हो जाते हैं। मसीही लोग संसार के देवता की उपासना करने वालों के रीति रिवाजों का अनुकरण करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। कई आग्रह करते हैं कि सांसारिक लोगों के साथ मिलकर और उनके रीति रिवाजों को अपनाकर वे अधर्मियों पर अधिक प्रभाव डाल सकते थे। लेकिन जो भी इस पद्धति का प्रयोग करते हैं वे स्वयं को शक्ति के स्रोत से अलग कर लेते हैं। संसार के मित्र बनकर वे परमेश्वर के शत्रु हो जाते हैं। सांसारिक विशिष्टता के लिए वे उस अवर्णनीय सम्मान को त्याग देते हैं जिसके लिए परमेश्वर ने उन्हें बुलाया है, अर्थात उसकी स्तुति जिसने हमें अंधकार से बाहर निकालकर उसके अद्भुत प्रकाश में बुलाया है। गहरी उदासी के साथ शामुएल ने लोगों के शब्दों को सुना, लेकिन प्रभु ने उससे कहा, जैसा वे कह रहे हैं वैसा ही कर और उनके लिए एक राजा चुन ले। भविष्यद्वक्ता ने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया था। उसने ईमानदारी से चेतावनी प्रस्तुत कर दी थी और उसे अस्वीकार कर दिया गया था। भारी मन से उसने लोगों को भेजा और वो स्वयं शासन में बड़े बदलाव के लिए तैयार होने के लिए वहां से गया। शामुएल के जीवन की शुद्धता और निस्वार्थ भक्ति इज़राइल की विषयासक्त, घमंडी प्रजा और स्वार्थी याजकों के लिए चिरस्थायी फटकार थी। यद्यपि उसने किसी आडंबर की कल्पना नहीं की और न कोई प्रदर्शन किया था, उसके श्रम पर स्वर्ग की मुहर थी। संसार का उद्धारकर्ता उसका सम्मान करता था, वो उद्धारकर्ता जिसके मार्गदर्शन में उसने इब्रियों पर शासन किया। लेकिन लोग उसकी भक्ति और धार्मिकता से थक चुके थे, उन्हें उसके दीन अधिकार से घृणा थी और उन्होंने उसे उस व्यक्ति के रूप में स्वीकार नहीं किया जो राजा बनकर उन पर राज करें। शामुएल के चरित्र में हमें मसीह की समानता का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। वो हमारे उद्धारकर्ता के जीवन की पवित्रता थी जिसने शैतान के क्रोध को भड़काया। वो जीवन जगत की ज्योति था और मनुष्यों के हृदय की गुप्त दुष्टता को उजागर करती थी। मसीह की पवित्रता ने ही धार्मिकता के ढोंगी गुरुओं के अतिकर आवेगों को उसके विरुद्ध उत्तेजित किया। मसीह पृथ्वी के सम्मानों और निधि के साथ नहीं आया, लेकिन उसके द्वारा किए गए कार्यों से यह स्पष्ट हो गया कि उसकी सामर्थ अन्य सभी सांसारिक प्रधानों की सामर्थ से अधिक थी। यहूदियों को आशा थी कि मसीह उन पर से अत्याचारियों के जुए को तोड़ डालेगा, लेकिन वे उन पापों को संजोए हुए थे जिन्होंने उस जुए को उनकी गर्दनों पर बांध रखा था। यदि मसीह ने उनके पापों को आच्छादित किया होता और उनकी धार्मिकता को सराहा होता तो वे उसको राजा तो स्वीकार कर लेते, लेकिन अपने पापों के लिए उसकी निर्भय निंदा को वे सहन नहीं करते। चरित्र की उस सुंदरता से जिसमें उदारता, निर्मलता और पवित्रता का स्थान सबसे ऊपर था, जिसमें पाप के अलावा और किसी चीज से घृणा नहीं थी, वे घृणा करते थे। संसार के प्रत्येक युग में ऐसा ही हुआ है। स्वर्ग से प्राप्त प्रकाश उन सबको निंदनीय ठहराता है जो उसकी ज्योति में चलना नहीं चाहते। जब पाप से घृणा करने वालों के उदाहरण से पाखंडियों की निंदा होती है तो वे सत्यनिष्ठ लोगों को सताने और उन पर अत्याचार करने के लिए शैतान के कर्मक बन जाते हैं। वास्तव में जो परमेश्वर की सेवा में नेकी के साथ जीना चाहते हैं वे सताए जाएंगे। दूसरा तिमुथियुस 3:12। हालांकि इज़राइल के लिए राजतंत्रीय शासन की भविष्यवाणी की गई थी, उनके राजा के चयन का अधिकार परमेश्वर ने स्वयं के पास सुरक्षित रखा था। अभी तक चयन को पूरी तरह परमेश्वर पर छोड़कर इब्री परमेश्वर के अधिकार का सम्मान करते थे। बिन्यामीन के गोत्र से कीश के पुत्र शाऊल को चुना गया। भावी राजा की व्यक्तिगत विशेषताएं ऐसी थीं कि वे हृदय के घमंड को संतुष्ट करती थीं, जिसके कारण एक राजा के होने की अभिलाषा जागृत हुई। वहां इसराइलियों में शाऊल से अधिक सुंदर कोई नहीं था। पहला शामुएल 9:2। कुलीन और गरिमापूर्ण व्यवहार का धारक, नौजवानी में सुदर्शन और कद में ऊंचा, बाहरी आकर्षक विशेषताओं के होते हुए भी उसमें वास्तविक बुद्धिमता के गुणों का अभाव था। अपनी किशोरावस्था में उसने अविवेकपूर्ण और आवेशपूर्ण जुनून पर नियंत्रण रखना नहीं सीखा था, और न ही उसे पवित्र अनुग्रह के सामर्थ्य का आभास हुआ था जिसमें परिवर्तन लाने की शक्ति होती है। शाऊल एक धनवान और प्रभावशाली मुखिया का पुत्र था, लेकिन उस समय की सादगी के अनुसार वो अपने पिता के साथ एक खेतीहर के कर्तव्यों में व्यस्त था। उसके पिता के कुछ पशु पहाड़ों पर भटक गए थे, इसलिए एक सेवक को साथ लिए वो उन्हें ढूंढने निकला। 3 दिनों तक वे व्यर्थ में ढूंढते रहे। फिर जब वे शामुएल के घर रामा से कुछ ही दूर थे, उस सेवक ने खोए हुए पशुओं के संबंध में भविष्यद्वक्ता से पूछताछ करने का प्रस्ताव रखा। मेरे पास 1 शेकेल चांदी का 1/4 हिस्सा है जो मैं परमेश्वर के दास को दूंगा कि वो हमको बताए कि हम किधर जाएं। ये उस समय की परंपरा के अनुसार था। यदि कोई व्यक्ति पद या कार्यभार में स्वयं से श्रेष्ठ व्यक्ति से भेंट करता था तो आदर प्रकट करने के लिए वो उसे छोटी सी भेंट देता था।
नगर के समीप पहुंचने पर उनकी भेंट कुछ नवयुवतियों से हुई जो पानी भरने आई थीं, और शाऊल और उसके सेवक ने उनसे भविष्यद्वक्ता का पता पूछा। उत्तर में उन्हें कहा गया कि एक धार्मिक विधि होने को थी और भविष्यद्वक्ता वहां आ चुका था और ऊंचे स्थान पर भेंट चढ़ाई जाएगी और उसके बाद बलिदान संबंधी सहभोज होगा। शामुएल के प्रशासन के तहत बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था जब परमेश्वर की ओर से उसे पहली बार बुलाया गया था। मिलाप वाले तंबू की विधियों का तिरस्कार किया जाता था। वे यहोवा को भेंट की गई बलि के प्रति श्रद्धा नहीं रखते थे। पहला शामुएल 2:17। लेकिन अब परमेश्वर की आराधना पूरे राज्य में की जाती थी। लोग धार्मिक विधियों में रुचि दिखाते थे। पवित्र स्थान में कार्य संपादन न होने के कारण कुछ समय के लिए बलि की भेंट कहीं और चढ़ाई जाती थी, और इस कार्य के लिए लेवियों और याजकों के नगर, जहां लोग निर्देश प्राप्त करने जाते थे, चुने गए थे। इन नगरों के सबसे ऊंचे टीले बलि के स्थान के रूप में चुने जाते थे, इसलिए ये उच्च स्थान कहलाते थे। नगर के फाटक पर भविष्यद्वक्ता स्वयं शाऊल से मिला।
परमेश्वर ने शामुएल पर प्रकट किया था कि इज़राइल के लिए चुना हुआ राजा स्वयं उसके सम्मुख प्रस्तुत होगा। जब वे आमने सामने खड़े हुए, परमेश्वर ने शामुएल से कहा, यही वह व्यक्ति है जिसके बारे में मैंने तुमसे कहा था, ये मेरे लोगों पर शासन करेगा। शाऊल ने शामुएल से निवेदन किया, कृपया बता कि भविष्यद्वक्ता का घर कहाँ है। शामुएल ने उत्तर दिया, मैं ही भविष्यद्वक्ता हूं। उसे आश्वासन देते हुए कि खोए हुए पशु मिल गए थे, शामुएल ने उससे ठहरने और सहभोज में सम्मिलित होने का कहा और साथ ही साथ उसे उसकी महान नियति का भी संकेत दिया। अब तुम्हें सारा इज़राइल चाहता है, वे तुम्हें और तुम्हारे पिता के परिवार के सभी लोगों को चाहते हैं। भविष्यद्वक्ता से ये सुनकर सुनने वाले का हृदय गदगद हो गया। वह उन शब्दों के महत्व को समझ गया, क्योंकि एक राजा की मांग संपूर्ण राज्य के लिए अत्यंत उत्सुकता का विषय बन गया था। फिर भी विनयपूर्ण दीनता से शाऊल ने उत्तर दिया, किंतु मैं तो बिन्यामीन परिवार समूह का एक सदस्य हूं, जो इज़राइल में सबसे छोटा परिवार समूह है। आप क्यों कहते हैं कि इज़राइल मुझको चाहता है? शामुएल आगंतुक को सभास्थल पर ले गया, जहां नगर के प्रतिष्ठित व्यक्ति एकत्रित हुए थे। उनके मध्य में भविष्यद्वक्ता के निर्देशानुसार सम्मान का स्थान शाऊल को दिया गया और सहभोज के समय सबसे उत्तम भाग उसके सम्मुख रखा गया। विधियों के संपन्न होने के पश्चात शामुएल अपने अतिथि को अपने निजी निवास पर ले गया और वह छत पर उसके साथ बातचीत की और उसके सम्मुख उन महान सिद्धांतों को रखा जिनके आधार पर इज़राइल की सत्ता स्थापित की गई थी, और इस प्रकार कुछ हद तक उसे इस ऊंचे पद के लिए तैयार करना चाहा। दूसरे दिन सुबह होने पर भविष्यद्वक्ता शाऊल के साथ गया। नगर पार करके उसने सेवक को आगे जाने को कहा। फिर उसने शाऊल को सीधे खड़े होकर उस संदेश को प्राप्त करने को कहा जो परमेश्वर ने उसे दिया। फिर शाऊल ने विशेष तेल की एक क्रिप्पी ली। शामुएल ने शाऊल के सिर पर तेल उंडेला और उसे चूमते हुए कहा, यहोवा ने तुम्हारा अभिषेक अपने लोगों का प्रमुख बनाने के लिए किया है। तुम यहोवा के लोगों पर नियंत्रण करोगे। तुम उन्हें उन शत्रुओं से बचाओगे जो उन्हें चारों ओर से घेरे हुए है। यहोवा ने तुम्हारा अभिषेक चुनाव अपने लोगों का शासक होने के लिए किया है। एक चिन्ह प्रकट होगा जो प्रमाणित करेगा कि यह सत्य है। इस बात का प्रमाण देने के लिए कि यह परमेश्वर के अधिकार से किया गया था, उसने उन घटनाओं की भविष्यवाणी की जो उसकी घर वापसी की यात्रा के द्वारा घटित होने वाली थी, और उसने शाऊल को आश्वासन दिया कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसे राजा के पद के लिए सुयोग्य बनाएगा। भविष्यद्वक्ता ने कहा, यहोवा का आत्मा तुझ पर उतरेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा, और जब ये चिन्ह तुझे दिखाई पड़ेंगे तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा।
जैसे ही शाऊल वहां से चला, सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा कि भविष्यद्वक्ता ने कहा था। बिन्यामीन की सीमा पर पहुंचकर उसे बताया गया कि उसके खोए हुए पशु मिल गए थे। ताबोर की तराई में उसे तीन पुरुष मिले जो बेथेल से परमेश्वर की आराधना करने वाले थे। उनमें से एक ने बलि के लिए तीन बकरी के बच्चे पकड़े हुए थे, दूसरे ने तीन रोटी और तीसरे ने बलि संबंधी सहभोज के लिए एक दाखरस की बोतल ली हुई थी। उन्होंने शाऊल को व्यवहारिक अभिनंदन किया और तीन रोटी में से दो रोटी उसे दे दी। उसके अपने शहर गिबा में उच्च स्थान से लौटता हुआ भविष्यद्वक्ताओं का समूह सितार, डफ और बांसुरी की धुन पर परमेश्वर की प्रशंसा के गीत गा रहे थे। जैसे ही शाऊल उनके पास पहुंचा, परमेश्वर का आत्मा उस पर भी उतरा और वह भी उसके साथ प्रशंसा के गीत गाने लगा और भविष्यद्वाणी करने लगा। वह इतनी वाक्पटुता और पांडित्य से बोला और उनकी विधि में इतनी निष्ठा से सम्मिलित हुआ कि उससे जो परिचित थे वे आश्चर्य करते हुए बोले, कीश के पुत्र को यह क्या हुआ? क्या शाऊल भी भविष्यद्वक्ताओं में से एक है? जब शाऊल ने भविष्यद्वक्ताओं के साथ आराधना की, पवित्र आत्मा के द्वारा उसमें बहुत परिवर्तन आया। ईश्वरीय शुद्धता और पवित्रता का प्रकाश प्राकृतिक हृदय के अंधकार पर चमका। उसने स्वयं को ऐसे देखा मानो वह परमेश्वर के सम्मुख हो।
उसने पवित्रता की सुंदरता को देखा। अब उसे पाप और शैतान के विरुद्ध संग्राम प्रारंभ करने के लिए बुलाया गया और उसे यह एहसास दिलाया गया कि इस संघर्ष में उसका सामर्थ्य पूर्णतया परमेश्वर की ओर से आया था। उद्धार की योजना, जो धुंधली और अनिश्चित प्रतीत हो रही थी, अब उसको समझ आ गई। परमेश्वर ने उसे उसके उच्च पद के लिए साहस और बुद्धि प्रदान किए। उसने उस पर अनुग्रह और सामर्थ्य के स्रोत को प्रकट किया और पवित्र अधिकारों और अपने निजी कर्तव्य के बारे में उसकी समझ को प्रबुद्ध किया। शाऊल का राजा के रूप में अभिषेक किए जाने के बारे में इज़राइली प्रजा को नहीं बताया गया था। परमेश्वर के चयन को सार्वजनिक तौर पर प्रकट किया जाना था। इस कार्य के लिए शामुएल ने मिस्पा में लोगों की सभा बुलाई। ईश्वरीय मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की गई और इसके बाद चयन का विधिवत समारोह हुआ। एकत्रित हुई प्रजा चुपचाप इस कार्य की प्रतीक्षा करती रही। गोत्र, परिवार और घरानों को क्रमानुसार खड़ा किया और फिर कीश के पुत्र शाऊल को चुने हुए व्यक्ति की तरह संकेत किया गया। लेकिन शाऊल सभा में नहीं था। स्वयं पर एक महान उत्तरदायित्व के आने के आभास के कारण शाऊल चुपचाप पीछे हट गया था। उसे प्रजा के पास लाया गया, जिन्होंने संतोष और गर्व के साथ देखा कि वह एक कुलीन और राजसी आचरण का था और लोगों से लंबा था। शामुएल भी उसे प्रजा के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए बोला, क्या तुमने यहोवा के चुने हुए को देखा है कि सारे लोगों में कोई उसके बराबर नहीं? और उत्तर देते हुए सब लोग ललकार कर बोले, उठे, राजा चिरंजीव रहे। शामुएल ने इसके बाद राजा की राजनीति को लोगों के सम्मुख रखा और उन सिद्धांतों का वर्णन किया जिन पर राजशाही शासन आधारित था और जिसके द्वारा उन्हें संचालित किया जाना था। राजा को एक निरंकुश सम्राट न होकर अपने अधिकार को सर्वोच्च परमेश्वर के अधीन रखना था। इस संबोधन का उल्लेख पुस्तक में किया गया, जहां शासक के प्राधिकारों और प्रजा के विशेषाधिकारों और अधिकारों का वर्णन किया गया। यद्यपि लोगों ने शामुएल की चेतावनी का तिरस्कार किया था, सत्यनिष्ठ भविष्यद्वक्ता उसकी अभिलाषाओं के आगे समर्पण करने को विवश होकर भी, जहां तक संभव था, उनकी स्वाधीनता की सुरक्षा करने के लिए प्रयत्नशील था। हालांकि सामान्य तौर पर लोग शाऊल को राजा के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार थे, लेकिन एक बड़ा दल विपक्ष में था। इज़राइल के गोत्रों में सबसे छोटे गोत्र बिन्यामीन ने से राजा का चुना जाना और वो भी सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली यहूदा और एप्रेम की उपेक्षा कर एक ऐसा अपमान था जिसे वे सहन नहीं कर पाए। उन्होंने शाऊल के प्रति स्वामी भक्ति या उसके लिए परंपरागत भेंट लाने से इनकार कर दिया। जो राजा की मांग करने में सबसे अधिक उतावले थे, उन्होंने ही परमेश्वर द्वारा नियुक्त व्यक्ति को कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करने से मना कर दिया। प्रत्येक दल के सदस्यों का अपना प्रीतिपात्र था, जिसे वो सिंहासन पर बैठा देखना चाहते थे, और उनमें से कई अगवे इस सम्मान को स्वयं के लिए चाहते थे, और उनमें से कई हृदय ईर्ष्या और द्वेष से जल रहे थे। महत्वाकांक्षा और घमंड के प्रयत्न निराशा और असंतोष में प्रमाणित हुए थे। इन परिस्थितियों में शाऊल ने राजसी सम्मान को ग्रहण करना उचित नहीं समझा। शामुएल को पहले की तरह शासन करने को छोड़कर वो गिबा को लौट गया। उसे वहां से सम्मानपूर्वक एक दल के साथ भेजा गया, जो उसके चुनाव में ईश्वरीय चयन को देखकर उसे बनाए रखने को संकल्पित थे। लेकिन शाऊल ने सिंहासन पर अपने अधिकार को बलपूर्वक बनाए रखने का कोई प्रयत्न नहीं किया। बिन्यामीन के पहाड़ी प्रदेश में अपने घर जाकर वो खेतीहर के कर्तव्यों में व्यस्त हो गया और अपने आधिपत्य की स्थापना को पूर्णतया परमेश्वर पर छोड़ दिया। शाऊल की नियुक्ति के तुरंत बाद नाहाश राजा के नेतृत्व में अम्मोनियों ने यर्दन के पूर्व के प्रांत पर चढ़ाई की और गिलाद के याबेश नगर में डेरा डाला। वहां के निवासियों ने अम्मोनियों के अधीन होने के प्रस्ताव द्वारा उनके साथ शांतिपूर्ण समझौता करना चाहा। इसके लिए निर्दयी राजा केवल इस शर्त पर सहमत हुआ कि उनमें से प्रत्येक की दाहिनी आंख फोड़कर उनको उसकी शक्ति का स्थायी साक्षी बनाया जाए। घेराव किए हुए नगर के लोगों ने 7 दिनों का समय मांगा। इसके लिए अम्मोनी ये सोचकर सहमत हो गए कि वे अपनी अपेक्षित विजय के सम्मान को और ऊंचा कर सकेंगे। याबेश से दूतों को तत्काल भेजा गया, जिससे कि यर्दन के पश्चिम के गोत्रों से सहायता प्राप्त की जा सके। वे समाचार लेकर गिबा पहुंचे और इससे भय व्यापक रूप से फैल गया। रात को शाऊल बैलों के पीछे पीछे मैदान में चला आ रहा था कि उसने लोगों के चिल्लाकर रोने की आवाज सुनी जो किसी विपत्ति का संदेश दे रही थी। उसने पूछा, लोगों को क्या हुआ कि वे रोते हैं? जब अपमानजनक कहानी दोहराई गई, उसकी दबी हुई शक्तियां जागृत हो गईं। परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा और उसने एक जोड़ी बैल लेकर उसके टुकड़े टुकड़े किए और ये कहकर दूतों के हाथ से इज़राइल के सारे देश में कहला भेजा, जो कोई आकर शाऊल के पीछे न हो लेगा उसके बैलों के साथ ऐसा ही किया जाएगा। शाऊल के नेतृत्व में बेजक की तराई में 3,000 पुरुष एकत्रित हुए। दूतों को तत्काल ही गिलाद के याबेश नगर में इस आश्वासन के साथ भेजा गया कि सुबह होने पर, अर्थात उसी दिन जब उन्हें अम्मोनियों के आगे समर्पण करना था, उन्हें अवश्य ही सहायता प्राप्त होगी। शाऊल की सेना तीव्र गति से रातों रात यर्दन को पार कर रात के अंतिम पहर पर याबेश पहुंचे। गिदोन की तरह शाऊल ने अपनी सेना को 3 टुकड़ियों में बांटा और उस पहर अम्मोनियों की छावनी पर टूट पड़ा, जब खतरे का अंदेशा न होने से वे बिल्कुल असुरक्षित थे। उसके बाद जो हुआ उसमें बहुत नरसंहार हुआ और जो बच निकले वे वहां तक तितर बितर हो गए कि कहीं भी 2 जन भी इकट्ठे न रहे।
शाऊल की तत्परता और साहस और इतनी विशाल सेना के सफल संचालन में प्रदर्शित उसका सेनापत्य, वे गुर थे जो इज़राइल अपने राजा में देखना चाहते थे, जिससे कि वे अन्य राष्ट्र के समान हो सकें। उन्होंने अब शाऊल का राजा के रूप में अभिनंदन किया और विजय का श्रेय मानवीय साधनों को देते हुए वे भूल गए कि परमेश्वर के विशेष आशीर्वाद के अभाव में उनके सभी प्रयत्न व्यर्थ होते। इस उत्साह में किसी किसी ने प्रस्ताव रखा कि जिन्होंने पहले शाऊल के अधिकार को स्वीकार करने से मना कर दिया था उन्हें मार डाला जाए, लेकिन राजा ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, आज के दिन कोई भी मार डाला न जाएगा, क्योंकि आज यहोवा ने इसराइलियों को छुटकारा दिया है। यह शाऊल ने अपने स्वभाव में परिवर्तन होने का प्रमाण दिया। जीत का श्रेय स्वयं को देने के बजाय उसने परमेश्वर की महिमा की। प्रतिशोध की इच्छा न दिखाकर उसने क्षमाशीलता और सहानुभूति की भावना को प्रकट किया। यह इस बात का निश्चय प्रमाण है कि परमेश्वर का अनुग्रह हृदय में वास करता है। शामुएल ने अब गिलगल में एक राष्ट्रीय सभा के आयोजन का प्रस्ताव रखा, जिससे कि वहां राज्य को सार्वजनिक तौर पर शाऊल को दिया जाए। ऐसा ही किया गया। वहीं उन्होंने यहोवा को मेल बलि चढ़ाए और वहीं शाऊल और सब इसराइलियों ने अत्यंत आनंद मनाया। गिलगल में इसराइल ने पहला पड़ाव डाला था। यहीं पर यहोशू ने पवित्र निर्देश द्वारा यर्दन को चमत्कारी रूप से पार करने के स्मारक के रूप में 12 पत्थरों के स्तंभ को स्थापित किया था। यहीं पर खतने की विधि को दोहराया गया था। यहीं पर मरुस्थल में पड़ाव और कादेश में किए गए पाप के पश्चात पहला फसह का पर्व मनाया गया था। यहीं पर मन्ना का मिलना बंद हुआ था। यहीं पर यहोवा की सेनाओं के कप्तान ने स्वयं इसराइल के सेना प्रमुख के रूप में प्रकट किया था। इसी जगह से उन्होंने यरीहा और ऐ के लिए कूच किया था। यहीं आकान को उसके पाप का दंड मिला था और यहीं पर गिबोनियों के साथ वो संधि की गई जिसके माध्यम से इसराइलियों को परमेश्वर की सम्मति लेने की उपेक्षा के लिए दंडित किया गया। इतनी सारी उत्साहवर्धक घटनाओं से जुड़ी इस तराई पर शामुएल और शाऊल खड़े हुए और जब उनका स्वागत करती आवाजें शांत हुई, वृद्ध भविष्यद्वक्ता ने राज्य के शासक के रूप में अपने अंतिम शब्द कहे, सुनो, जो कुछ तुमने मुझसे कहा था उसे मानकर मैंने एक राजा तुम्हारे ऊपर ठहराया है, और अब देखो वह राजा तुम्हारे आगे आगे चलता है, और अब मैं बूढ़ा हूं और मेरे बाल सफेद हो गए हैं और मेरे पुत्र तुम्हारे पास है, और मैं लड़कपन से लेकर आज तक तुम्हारे सामने कार्य करता रहा हूं, मैं उपस्थित हूं। इसलिए तुम यहोवा के सामने और उसके अभिषिक्त के सामने साक्षी दो कि मैंने किसका बैल लिया है, या किसका गधा ले लिया, या किस पर अत्याचार किया, या किसके हाथ से अपनी आंख बंद करने के लिए घूस ली, बताओ और मैं तुमको लौटा दूंगा। एक आवाज में लोगों ने उत्तर दिया, तूने न तो हम पर अंधेर किया
न हम पर अत्याचार किया और न किसी के हाथ से कुछ लिया है। शामुएल केवल अपनी कार्यप्रणाली को न्यायसंगत ठहराने का प्रयत्न नहीं कर रहा था। उसने पहले से ही राजा और प्रजा को शासित करने वाले सिद्धांतों का वर्णन किया था और वो अपने उदाहरण का प्रभाव उसके कहे शब्दों पर डालना चाहता था। बचपन से ही वो परमेश्वर के कार्य से जुड़ा हुआ था और उसके लंबे जीवन के दौरान परमेश्वर की महिमा और इज़राइल के सर्वोच्च कल्याण का लक्ष्य हमेशा उसके सम्मुख रहा था।
इज़राइल की समृद्धि की कोई भी आशा करने से पहले उन्हें परमेश्वर के सम्मुख प्रायश्चित करना था। पाप के फलस्वरूप उन्होंने परमेश्वर में अपना विश्वास और राज्य पर शासन करने की उसकी सामर्थ्य और बुद्धिमता के संदर्भ में अपने विवेक को खो दिया था। उन्होंने परमेश्वर के उद्देश्य को उसी के द्वारा सही प्रमाणित करने की उसकी योग्यता में अपना विश्वास खो दिया था। सच्ची शांति प्राप्त करने से पहले यह आवश्यक है कि जिस पाप के लिए वे दोषी हैं उसका अंगीकार करें। उन्होंने राजा की मांग के लक्ष्य को घोषित कर दिया था कि हमारा राजा हमारा न्याय करे और हमारे आगे आगे जाकर हमारे लिए युद्ध करे। शमूएल ने इज़राइल के इतिहास को उस दिन से दोहराया जब परमेश्वर उन्हें मिस्र से निकाल कर लाया था। राजाओं का राजा यहोवा उनके आगे आगे गया था और उनके लिए उसने लड़ाइयां लड़ी थीं। प्रायः उनके पाप उन्हें उनके शत्रुओं के अधिकार में बेच देते थे, लेकिन जैसे ही वे अपने पापमय तौर तरीकों से मुंह फेर लेते थे, करुणामयी परमेश्वर ने उनके लिए एक उद्धारकर्ता भेजा था। यहोवा ने गिदोन और बाराक और यिप्ताह और शमूएल को भेजकर तुमको तुम्हारे चारों ओर के शत्रुओं के हाथ से छुड़ाया और तुम निडरता से रहने लगे। और जब उन पर संकट आया तो वे बोले, हम पर एक राजा राज्य करेगा। और भविष्यद्वक्ता ने कहा, ऐसा उन्होंने तब कहा जब तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारा राजा था। शमूएल ने आगे कहा, अब तुम खड़े रहो और इस बड़े काम को देखो जिसे यहोवा तुम्हारी आंखों के सामना करने पर है। आज क्या गेहूं की कटनी नहीं हो रही? मैं यहोवा को पुकारूंगा और वह मेघ गर्जन करेगा और मेह बरसाएगा। तब तुम जान लोगे और देख भी लोगे कि तुमने राजा मांगकर यहोवा की दृष्टि में बहुत बड़ा पाप किया है। तब शमूएल ने यहोवा को पुकारा और यहोवा ने उसी दिन मेघ गर्जन किया और मेह बरसाया, और सब लोग यहोवा से और शमूएल से अत्यंत डर गए। अन्न की कटाई के समय मई और जून में पूरब में कोई वर्षा नहीं हुई। आसमान साफ था और मंद मंद वायु प्रवाहित हो रही थी। इस ऋतु में इतने भयंकर तूफान ने लोगों को भयभीत कर दिया। लोगों ने दीन होकर अपने पाप का अंगीकार किया जिस पाप के लिए वे दोषी थे। अपने दासों के निमित्त अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर कि हम मर न जाएं, क्योंकि हमने अपने सारे पापों से बढ़कर यह बुराई की है कि एक राजा की मांग की। शमूएल ने लोगों को निराशा की अवस्था में नहीं छोड़ा, क्योंकि ऐसा करने से एक बेहतर जीवन के सभी प्रयत्नों पर रोक लग जाती। शैतान उन्हें परमेश्वर को कठोर और निर्मम मानने के लिए बाध्य कर देता और वे कई प्रलोभनों का शिकार बन जाते। परमेश्वर दयावान और क्षमाशील है, जो हमेशा अपने लोगों पर कृपा दृष्टि करने का इच्छुक होता है जब वे उसका कहा मानते हैं। दास के माध्यम से परमेश्वर का संदेश था, डरो मत, तुमने ये सब बुराई तो की है, परंतु अब यहोवा के पीछे चलने से फिर मत मुड़ना, परंतु अपने संपूर्ण मन से उसकी उपासना करना और मत मुड़ना, नहीं तो ऐसी व्यर्थ वस्तुओं के पीछे चलने लगोगे जिनसे न कुछ लाभ और न छुटकारा हो सकता है, क्योंकि वे व्यर्थ है। यहोवा अपनी प्रजा को कभी नहीं तजेगा। शमूएल ने स्वयं के अपमान के संदर्भ में कुछ नहीं किया और ना ही उस अकृतज्ञता की निंदा की जो इज़राइल ने उसकी जीवन भर की भक्ति के प्रति दिखाई थी, लेकिन उसने उन्हें अपनी कभी न समाप्त होने वाली रुचि का आश्वासन दिया, ऐसा कभी न हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं, मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। केवल यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उनकी उपासना करो, क्योंकि यह तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कितने बड़े बड़े काम किए हैं। परंतु यदि तुम बुराई करते ही रहोगे तो तुम और तुम्हारा राजा दोनों मिट जाओगे।